In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो ये हमारी दरस कुरान वाली क्लास होती है रमजान मुबारक में, जो रोजाना हो रही है, और इसमें हम सूरह अनआम के इस वक्त आयात नंबर 95, 96, 97 और 98 पढ़ रहे हैं, जिनकी तिलावत अभी आपके सामने की गई। तो इनके मारिफ व मसाइल पढ़ने हम पिछली क्लास में शुरू कर चुके थे। तो इनमें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इन नवाह फादिकुल हब वन नवा इस आयत के जेल में, यानी इसके तहत फरमाया था कि अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने को और गुठलियों को। अल्लाह ताला अल्लाह ही है। इसमें कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा बताया गया कि खुश दाना और खुश गुठली को फाड़ कर उसके अंदर से हरा भरा दरख्त निकाल देना सिर्फ उसी जाते पाक का फिल है जो खालिक कायनात है, और कोई ये काम नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो खालिक कायनात है। तो कल जो क्लास हुई थी उसमें आखिरी बात क्या हो रही थी कि बेशक है तो ऐसा ही कि अल्लाह ही ये काम करता है, लेकिन जो बनी आदम का, हमारा आपका सबका मुश्तरका दुश्मन है जिसका नाम है शैतान, तो वो हकीकत को छुपा देता है, वो हकीकत को कंफ्यूज करवा देता है देखने वाले को कि वो उसको नजर नहीं आ रही होती। हालांकि वो जैसे कहते हैं ना उर्दू में, रोजे रोशन की तरह आया एक चीज होती है, वो आंखों के सामने पर्दा डाल देता है या आंखों के सामने स्मोक स्क्रीन टाइप की कोई चीज कर देता है कि हकीकत है। जैसे आप कोई हिमालय के सामने हैं, माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े हो, और आपके आंखों के सामने अगर कोई पर्दा आ जाए या आपकी आंखों के सामने धूल आ जाए तो आपको कोई हिमालय नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई को कोई हिमालय है ही नहीं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, इस वजह से कोई हिमालय है ही नहीं। भाई आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपकी आंखों के सामने जो है वो मिट्टी आ गई है, धूल आ गई है, पर्दा आ गया है, दीवार आ गई है, कोई हिमालय तो है अपनी जगह के ऊपर। तो शैतान यही करता है हमारे साथ, ठीक है? तो इस वजह से शैतान का जो निजाम है, तालीमी निजाम, दज्जाली निजाम, कुफर का निजाम, कॉलोनियल पावर्स का बनाया हुआ निजाम, जो भी आप इसको कहें, तो उसने क्या धोखा दिया इंसान को कि ये काम तो इंसान भी कर सकता है, ये काम तो इंसान भी कर सकता है। देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, देखो साइंस ने जो है वो ऐसे नित नए जो है वो फूल बना लिए और जो है वो फल बना लिए, ऐसे टेस्ट जो थे वो तो पहले कभी थे ही नहीं। तो जो काम तुम कहते हो कि अल्लाह करता है, वो काम तो हमने भी कर लिया, वो काम तो साइंसदान ने भी कर लिया। अब देखें, हम जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि रियाज में हमने एक खुशबू वाला गुलाब लगा लिया, राइट? तो वो खुशबू वाला गुलाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर होता है, क्या खुशबू होती है उसकी, ठीक है? लेकिन साइंसदानों ने, आज के साइंसदानों ने, राइट, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अपने लगा लगा करके इन्होंने ऐसे गुलाब बना लिए कि जो इतने बड़े भी होते हैं और उनके रंग भी ऐसे होते हैं जो कि पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ठीक है, और इतने मजबूत भी होते हैं कि वो टूटते भी नहीं है। पाकिस्तानी गुलाब जो है, जो अल्लाह का बनाया हुआ है, उसमें बीच में जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं डाली गई है, तो वो उसकी उम्र अल्लाह ने रखी है भाई, उसकी तकदीर रखी है कि वो 2.5-3 दिन के बाद वो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो गुलाब बनाया साइंसदानों ने, ये मुरझाते ही नहीं है, कितने दिन तक चलता रहता है। हत्ता के हमारे घर वाले बता रहे थे कि अमरीका के गुलाब का उनके किसी कजन ने जो है ना वो हार बनाया, तो उसमें सुई डाल करके दूसरी तरफ से निकाली और बनाते बनाते पूरा उन्होंने हार बना दिया, तो एक गुलाब की पत्ती भी नहीं टूटी। फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि मैंने ये उल्टे लगा दिए हैं, फिर उन्होंने सुई को बाहर निकाला, यानी पूरा बाहर निकाला और दोबारा से बनाया, एक पत्ती भी नहीं टूटी उसकी, ऐसा गुलाब, ठीक है, और देखने भी इतने खूबसूरत। लेकिन एक बात आपको बताएं, एक दफा हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ किसी ने कुछ, कहते हैं अल्लाह वालों के साथ तो फिर लोग हरकतें करते हैं ना, ये तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसने क्या कुछ नहीं किया, तो जी के साथ भी किया, और वो क्या करने वाले जो थे ना, वो थे उधर के रहने वाले, वो समंदर पार के रहने वाले कुछ थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा हजरत के साथ भी किया, भाई अल्लाह के नबी के साथ किया तो हजरत के साथ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो हजरत जी जो है ना, बहुत दिल हजरत का दुखा, तो हजरत फरमाया करते थे कि यहाँ का ये हाल है, उस जगह के बारे में फरमाया करते थे कि यहाँ का ये हाल है कि फूलों में खुशबू नहीं, फूलों में खुशबू नहीं, फलों में मजा नहीं, इंसानों में वफा नहीं। फूलों में खुशबू नहीं यानी इनके जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चर्ड गुलाब और इतने अच्छे अच्छे फूल नजर आते हैं, खुशबू नहीं होती उनके अंदर, और फलों में मजा नहीं होता, फलों में मजा तो फिर हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर ही होता है, ठीक है ना, अगर जगह छोटे छोटे होते हैं लेकिन मजा उनके अंदर होता है, तो फलों में मजा नहीं, इंसानों में वफा नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म के इंसान भी होते हैं ना, यानी शैतान मॉडिफाइड, अब इंसान की जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो अब ये कर रहे हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, लेकिन शैतान मॉडिफाइड इंसान जो होता है ना, फिर उसके अंदर भी वफा नहीं होती, ठीक है। तो शैतान जो है वो इस तरीके से फिर इंसान को गुमराह करता है, और कहता है कि जी इंसान की कुदरत देखो, इंसान कितना कुदरत हासिल कर चुका है, कैसी उसके अंदर जो है वो ताकत आ गई है, कि ये जो मौलवी लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ही काम कर सकता है और कोई ये काम नहीं कर सकता, देखो हमारी लैब्स के अंदर, बल्कि अब तो हमारी मार्केट के अंदर भी ऐसी चीजें कसरत के साथ अवेलेबल है जो कि इंसान की बनाई हुई है। तो इस तरीके से जो बातें सुनते रहते हैं ना, फिर चाहे वो नाम के मोहम्मद हो या अब्दुल्ला हो, लेकिन ऐसी बातें उनके दिमाग में कानों में पड़ती रहती हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह वालों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जो अल्लाह की बड़ाई हकीकत में बयान करें, दिल से बयान करें। अल्लाह की बड़ाई जुबान से तो बहुत सारे लोग बयान कर, वैसे इतना आसान जुबान से भी बयान करना नहीं है बाय द वे, इतना आसान जुबान से भी अल्लाह की बड़ाई बयान करना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई धोखेबाज जो है वो कर लेता है, ठीक है। अल्लाह ताला किसी को इस्तिदराज भी तो देते हैं ना, इस्तिदराज का मतलब होता है किसी को ढील दे दी कि हाँ भाई चलो तुम लोगों को धोखा देना चाहते हो ना, चलो दो जुबान से मेरी बड़ाई बयान करो, दिल तुम्हारा मेरी बड़ाई से खाली है, तो वो इस्तिदराज होता है, लेकिन वो हर एक को नहीं मिलता। तो दिल से बड़ाई बयान करने वाले तो फिर वो अल्लाह वाले कहलाते हैं, उनके साथ अगर वास्ता नहीं होता और उधर से मुस्तकिल का एक वास्ता होता है, दिन रात के जो है वो स्कूल का वास्ता, 6-8-10 घंटे जो है वो स्कूल के अंदर टाइम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर ट्यूशनिंग के अंदर, और फिर उसके बाद उन्हीं किताबों के अंदर मुस्तगरक हो करके, और अल्लाह वालों से कोई वास्ता नहीं, तो फिर ऐसा सो कॉल्ड मुसलमान बच्चा हो या बड़ा हो, फिर वो भी इंसान की कुदरत का ही कायल हो जाता है, वो भी साइंसदान की कुदरत का ही कायल हो जाता है, और जिस कौम के अंदर साइंसदान ज्यादा होते हैं फिर वो उस कौम की अजमत का कायल हो जाता है। जिसके अंदर कौन है, अमेरिका के अंदर, पुराने जमाने में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा साइंसदान होते थे, आप कहेंगे अच्छा अब नहीं होते क्या, अब नहीं होते अब तो आवेगा आप ऑन इट्स वे आउट, अब तो अगला अगला है याकूब अलैहिस्सलाम वाला, समझ गए नहीं, तो अब साइंसदान वहां पर होते हैं, अब उन्होंने ऐसी साइंस बनानी है कि शायद जाल ने जो बंदे को काटना है ना, और काट करके फिर उसको जोड़ देना है, तो फिर वो कोई ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई है, ऐसी जो है वो सेल ग्रोथ होगी। आज वो क्या नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि जी हम तो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। असल में कैंसर के इलाज के लिए ना, जो वो जो जो कैंसर सेल्स होते हैं, तो उनको जो है वो अच्छे सेल से रिप्लेस करने के लिए हम सेल ग्रोथ कर रहे हैं, और वो बहुत महंगी है, तो अब हमने उसके ऊपर रोबोट्स को लगा दिया है। अब रोबोट्स जो है वो सेल ग्रोथ कर रहे हैं, और मिलियंस की तादाद में विद इन सेकेंड जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो कल को जो है वो कहेंगे कि बंदे को काट करके जोड़ देना कोई हमारे हमारे लिए मुश्किल काम ही नहीं है। लेकिन जो ईमान वाला होगा, क्या आया हदीस के अंदर कि एक सबसे ज्यादा ईमान वाला जो शख्स होगा ना, उसको दज्जाल काट करके फिर उसके बाद उसको जोड़ करके जो है वो जिंदा कर देगा, और कहेगा अब तुम मानते हो कि मैं खुदा हूं। उसने उस वक्त तक खुदाई का दावा कर लिया होगा, ठीक है, उस वक्त ये आएंगे उसके सामने और उसको जो है वो बुरी बली सुनाएंगे, वो काट देगा इनको, फिर जोड़ देगा इनको, फिर जिंदा कर देगा, जो भी उसकी शक्ल और फॉर्म होगी वी डोंट नो। लेकिन ये ईमान वाले क्या कहेंगे, अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। क्या मतलब, आज तक कितनी दफा यह चीज सुनी होगी, कभी सोचा इस बात को, कि वो कहेंगे कि अब तो मुझे और यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। ठीक है, मैं अपने बेटे को कभी कहूंगा कि अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू ही मेरा बेटा है। भाई मुझे तो पहले ही 100% यकीन था कि ये मेरा बेटा है, राइट। अगर मुझे थोड़ा डाउट होता कि पता नहीं मेरा बेटा है कि नहीं है, 95% होता, फिर मुझे पता चल गया अच्छा अब मुझे 100% यकीन हो गया, तब मैं बोलूंगा ना कि मुझे 100% यकीन हो गया कि अब आप मेरे बेटे हैं। ठीक है, तो जो वो कहेंगे दज्जाल को कि अब मुझे 100% यकीन हो गया, इसका मतलब क्या है कि पहले उनको 100% यकीन नहीं था, पहले उनको 100% यकीन नहीं था। हालांकि उस दौर के सबसे ज्यादा ईमान वाले शख्स नबी रसूल ने फरमाया। क्या पता चलता है इससे कि दज्जाल का धोखा ऐसा धोखा होगा, ऐसा धोखा होगा कि ऐसे लोग भी जो है ना वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये दज्जाल है या ये बड़ा नेक आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये अजीब। ठीक है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त के क्या हालात होंगे, हमें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम उस फितने से बच सकें। और ये मेहनत उस दिन नहीं शुरू होगी जिस दिन दज्जाल सामने आ जाएगा, उस वक्त ये मेहनत शुरू करेंगे ना तो टेक्निकल नॉकआउट। हजरी फरमाया करते थे ना कि जिसने बॉक्सिंग की मेहनत जो है वो रिंग में दाखिल होने के बाद शुरू करी, वो तो फौरन ही जमीन पे, ठीक है ना भाई। आपको पहले से मेहनत करनी है ना, तो दज्जाल से बचने के लिए भी पहले से मेहनत करनी है। आपके कोई फायदा
क्या ये कह सकते हैं कि उस वक्त उससे पहले वो बिल्कुल यकीन था, फिर एनुल यकीन हो गया, इस पे यकीन था।
हाँ, हदीस पर तो उनको यकीन था, इल्मुल यकीन था, ठीक है, कि ऐसी ऐसी निशानियां होंगी, लेकिन देख करके उनको यकीन हासिल हुआ, वो आइनुल यकीन होता है। बहुत अच्छी ये तशरीह है इसकी, क्योंकि ईमान वाले पक्के होंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि वो खुदाई का दावा कर रहा है और ये जो है वो अभी भी उसके बारे में गलत फहमी का शिकार है। गलत फहमी का तो शिकार नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आइनुल यकीन एक अलग चीज होती है। जब किसी चीज को आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मुशाहिदा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आपको जो है ना वो यकीन आपका बढ़ जाता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनको भी यकीन था, लेकिन जब उन्होंने परिंदों को दौड़ करके अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनका ये इल्मुल यकीन जो था वो आइनुल यकीन में तब्दील हो गया, या मजीद बढ़ गया इनका जितना पहले था उसके मुकाबले में। तो बहरहाल ये दज्जाल से बचने की तैयारी जो है ना, ये जितना बड़ा फितना है उससे बचने की तैयारी भी उसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी ना। तो आगे फरमाते हैं हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, ये दूसरा जुमला ये इरशाद फरमाया कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय, यानी अल्लाह ताला ही बेजान चीजों में से जानदार चीजों को पैदा करता है। बेजान से मुराद नुतफा या अंडा है, जिससे इंसान और हैवानात की तख्लीक होती है। इसी तरह जानदारों से बेजान चीजें निकाल देता है, यहाँ बेजान चीजों से मुराद वही नुतफा और अंडा है कि वो जानदार चीजों से निकलता है। कल जो है वो सादा सी मिसाल बीज की भी दी थी कि भाई बीज कहाँ पे उगता है, वो प्लांट तो जिंदा चीज होती है ना, नबातात, आज की साइंस वो भी इसको लिविंग थिंग्स में शुमार करती है। तो उसके अंदर से जो है वो जो बीज निकलता है वो आपको बजाहिर मुर्दा नजर आता है, लेकिन फिर उसी बीज में से अल्लाह ताला जो है वो अगला पौधा निकाल देते हैं। ठीक है। अब इसमें भी एक और बात है, यही बात हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि दज्जाल के लिए फिर ईमान की हिफाजत की तैयारी करनी है ना, तो इस वजह से तो बात बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, नए नए अंदाज से भी रिपीट करनी पड़ेगी कि इस आयत की नफी करती है ये साइंस, इस आयत की भी नफी करती है साइंस, काफिरों वाली साइंस, मुसलमानों वाली साइंस नहीं, काफिरों वाली साइंस। ठीक है, वो क्या कहती है कि भाई ये कौन से मुर्दा और जिंदा की बात कर रहे हैं भाई, ये जो बीज होता है इसके अंदर तो लाइफ होती है, ये तो पहले से लाइफ वाली चीज होती है, जो नुतफा नुतफा बोले चले आ रहे हैं इसमें तो पहले से लाइफ वाली चीज होती है, बीज के अंदर तो पहले से लाइफ वाली चीज होती है, ये कौन से नई बात कर रहे हैं कि जी मुर्दा में से लाइफ। देखो इनकी तो किताब ही गलत है, नाउज बिल्ला, देखो इनकी तो किताब ही गलत है, ये एक जिंदा चीज को मुर्दा कह रही है, राइट, जिंदा चीज को मुर्दा कह रही है। अब जिसका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं होगा, जिसकी ईमानी तरबियत नहीं हुई होगी कि नबी अलैहिस्सलाम पर मुझे एतमाद है, मुझे इन साइंसदानों की बात पर एतमाद नहीं है, ये होती है ईमानी तरबियत, इसको ईमान कहते हैं। नमाजें पढ़ने को ईमान समझ के बैठे हुए हैं, उम्रे करने को ईमान समझ करके बैठे गए हैं, एतमाद है नहीं, उम्रे करे चले जा रहे हैं, भागे दौड़े चले जा रहे हैं, हर वक्त ईमान की फिक्र ही नहीं है, समझे मैं कि जी वो तो है पहले से मेरे पास, पता भी नहीं है कि होता क्या चीज है ये। तो जिसकी ईमानी तरबियत हुई भी होगी, चाहे उसकी माँ ने करी हो, चाहे उसके बाप ने करी हो, चाहे उसके शेख ने करी हो, जिसकी ईमानी तरबियत हुई भी होगी, वो कहेगा कि तुम्हारा माइक्रोस्कोप जो भी कहे, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर यकीन रखता, मैं तो उस पर एतमाद रखता हूं। तो बस जो कुरान मजीद में आया, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें मिला ना, तो ये नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद में कुरान पर एतमाद भी शामिल है। तो ये मुर्दा चीज है, अब तुम कुछ भी कहते रहो आई डोंट केयर, तुम कुछ भी कहते रहो आई डोंट केयर, ठीक है, तो वो बोलता रहेगा और इसके ईमान के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए इस बात को समझ लेने और मान लेने इससे पहले कि इट्स टू लेट, अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर सो मेनी पीपल, इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर सो मेनी पीपल। अब उनके माँ बाप रोते हैं आकर के ना, अब उनके माँ बाप रो रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं, अब जाके अल्लाह के सामने रो, अल्लाह से माफी मांगो जो तुमने किया है उसके ऊपर, ठीक। अब अजबाब के सामने रोने का कोई फायदा नहीं, अब अजबाब खत्म हो चुके हैं, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसी बात है, इनकलाब तो कुरान के अंदर, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें माइक्रोस्कोप, आओ देखो ये तो लिविंग है, और तुम कह रहे हो जी ये तो मर्दा है, मुर्दा है, तो ऐसा नहीं है, जो अल्लाह ने डिफाइन किया है, जिसको जिंदा वो जिंदा है, जिसको अल्लाह ने डिफाइन किया मुर्दा वो मुर्दा है, ठीक है, ये है ईमान। तो बेजान से मुराद नुतफा या अंडा है, जिसे इंसान और हैवानात की तख्लीक होती है, इसी तरह जानदारों से बेजान चीजें निकाल देता है, यहाँ बेजान से मुराद वही नुतफा और अंडा है कि वो जानदार चीजों से निकलता है। इसके बाद फरमाया लोगों ये है अल्लाह, बस तुम किधर भागे चले जा रहे हो, ठीक है, यानी ये सब काम सिर्फ एक अल्लाह ताला के किए और बनाए हुए हैं, फिर ये जानते बूझते हुए तुम किस तरफ बहके चले जा रहे हो, खुद तराशीदा बुतों को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा माबूद कहने लगे, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। फानना यो पकून का ऐसे भी तर्जुमा किया कि तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, रास्ते से जो है वो गुमराह किया हुआ है, क्योंकि ये मजहूल का सीगा है ना, जो लोग अरबी पढ़ रहे हैं तो ये पैसिव का सीगा है, तो अब इसका डूअर कौन है, बजाहिर लफ्ज जुमले के अंदर इसका डूअर मौजूद नहीं है, तो उफकून, ठीक है, लेकिन इसका डूअर जो है वो इंसानी की, इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसने उनको जो है वो उसको गुमराह किया हुआ होता है, इसी वजह से जहां उसको अपनी ख्वाहिशात नजर आती है ना, वो उनके पीछे कल बात हुई थी ना दुम में, उनकी दुम के पीछे, ठीक है ना, ख्वाहिशात यूरोप में नजर आती हैं, यूरोप की दुम के पीछे, ख्वाहिशात अमेरिका में नजर आएंगी, अमेरिका वालों की दुम के पीछे, ठीक है, तो असल में अमेरिका वालों ने भी गुमराह नहीं किया, असल में लॉर्ड मैकॉले ने भी गुमराह नहीं किया, किसने गुमराह किया, असल में तो अपनी ख्वाहिशात ने, यानी अपने नफ्स ने गुमराह किया, अल्लाह ताला ने खाली उनको बहाना बना दिया है हमें गुमराह करने का, बहाना, आउटवर्ड एक सबब बना दिया है। असल में अंदर का ये जो गुरु घंटाल, हजरत जी फरमाया करते हैं ना, गुरु घंटाल जो नफ्स है ना अंदर, उसने गुमराह किया हुआ है, उसकी ख्वाहिशात है। तो दूसरी आयत में इरशाद है फालिकुल असबाह, इसबाह, ये फालिक के मानी उखाड़ने वाला और इसबाह के मानी यहाँ वक्त सुबह के हैं। फालिकुल असबाह के मानी है उखाड़ने वाला सुबह का, ठीक है। तो उखाड़ने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया दीन मुसे शफी रहमत वाले की, एक लफ्ज ने बहुत मामला आसान कर दिया कि भाई ये जो उखाड़ने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए क्योंकि जो रात होती है ना वो एक चादर की तरह से तन जाती है, चादर, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी, ये सूरज की रोशनी जो है वो सूरज तो मौजूद है लेकिन उसकी रोशनी पहुंच भी नहीं रही होती, क्योंकि कोई चीज सूरज की रोशनी और हमारे दरमियान, यानी जहां पर हम होते हैं, अगर वहां पे रात का टाइम आता है तो फिर हमारे और सूरज की रोशनी के दरमियान एक चादर तन जाती है जो कि उसको आने से रोक देती है, ठीक है ना। अब ये ठीक है, आप ऑप्टिकल डिटेल्स के अंदर जाएं कि भी वो इस तरह से एंगुलर है, वो बीच में जो है वो जमीन की रोशनी आ जाती है, होराइजन, सॉरी, जमीन की रुकावट आ जाती है, होराइजन की रुकावट आ जाती है, या जो है हमारी आंख की कोई लेंस का, जो भी इसकी तफसीलात है, लेकिन एक चादर की तरह से तन जाती है, इसी को रात कहते हैं, रोशनी नहीं आ रही होती है। तो अब इस चादर को फाड़ करके सुबह, यानी जब सुबह नमदार होती है ना, तो गोया कि वो जो जो चीज रोक रही होती है सूरज की रोशनी को आने से, वो चीज अब हटना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है और रोशनी जाकर उसके थ्रू आना शुरू हो जाती है। ये भी उन अफाल और आमाल में से है कि जिसमें जिन और बशर और सारी कायनात की कुव्वतें पीछे है, और हर आंखों वाला देखकर, हर आंखों वाला अंधे बनी समझ में आती है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल आंखें उसकी खराब हो गई हो तो उसको भी नजर नहीं आएगा कि अच्छा सूरज निकल गया है और रात हो गई है, नहीं नजर आएगा उसको, और जिसकी दिल की आंखें भी अंधी हो गई हो तो उसको भी ये चीजें नजर नहीं आएंगी, वो भी जो है वो उल्टी सीधी बातें सोच रहा होगा या सुन रहा होगा। तो आंख वाला क्या फरमाते थे महाराज जी, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, जो अंधा है आंख का, दीदे कोर, इसकी कोरी आंखें हैं, उसको क्या आए नजर क्या देखे, ये तो आंख वाला देखता है ना। तो यहाँ पर रूहानी आंख की भी बात हो रही है, और जिसकी आंख, रूहानी आंख बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना, बहुत ज्यादा खराब, तो इसका असर उसकी दुनिया, इसकी जिस्मानी आंख पे भी पड़ता है, यानी चश्मा लग जाता है, मुझे भी लग गया, हम तो है नहीं बुरे बुरे, ठीक है, नहीं, इसका मतलब ये है कि जिसकी रूहानी आंख बहुत खराब हो जाती है ना, तो अब उसको सामने भी अगर आप हकीकत दिखा देना, उसको वो भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसको वो भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसकी रूह इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है। पहले तो रूहानी तौर पर इंसान अंधा होता है, फिर इंसान की सर की आंखें भी अंधी हो जाती है, मतलब कि उसको फिजिकली इमेज नजर आ रहा होता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से इस दौर में जो है ना वो दीन की दावत का काम करना बहुत आसान है, क्यों, इस दौर में दीन की दावत का काम करना बहुत आसान काम है, वो इसलिए कि सब अंधे हो गए हैं, सब अंधे हो गए, ठीक है, रूहानी अंधे तो जाहिर है, हम अपने आप को भी यही कहेंगे और बाकी भी अनफॉर्चुनेट यही हाल है, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी अंधे हो गए, क्या मतलब कि जो बिल्कुल सामने ऑब्वियस डिटेल्स है ना, दे कैन नॉट पुट टू एंड टू टुगेदर, दे कैन नॉट पुट टू एंड टू टुगेदर, वो दो और दो जमा करके चार नहीं निकाल सकते। अब आपको करना क्या है, हमारा काम आसान कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया कि आप उनके सामने 2 + 2 इक्वल 4 करके दिखा देंगे, मुश्किल काम है, 2 + 2 इक्वल 4 करके दिखाना कोई मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान काम है ना, ठीक है। तो उनके जो गलत फहमियां है ना उनको खाक में मिला देना बहुत आसान काम हो गया, बहुत आसान काम हो, बिकॉज वो सामने मौजूद चीजों को नहीं देख पा रहे, जब आप उनके सामने दो चार बातें करते हैं ना, अगर आपको भी ढंग की बात करनी पड़ेगी, अकल की बात करनी है, बेवकूफी की बात से नहीं आपकी जो कन्विंस कर सकते,
अकल की दो बातें कर दें, वो कहेंगे हाँ यार वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यार जिस कई कई लोगों के साथ ही काम कर चुका है, कई लोगों के साथ ही काम हो चुका है, कहने में मजबूर हो जाते हैं हाँ यार वाकई ये बात तो आप सही करें, ये तो ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से, तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से। ठीक है, तो दीन का काम जो है वो नफी से शुरू होता है ना, नफी से, तो पहले तो उनकी जो गलत फहमी है ना उनकी नफी करेंगे, तब फिर उनको जरा परेशानी होगी, अच्छा फिर हक क्या है, अच्छा फिर सच क्या है, तब फिर वो सच की आगे बात सुनेंगे, तो नफी करनी पड़ती है, और आज के दौर में नफी करना बहुत आसान काम है, ये आपको बता रहे हैं अल्लाह ताला बात की समझ अता फरमा रहे। ठीक है, तो ये भी उन अफालो अमान में से है कि जिसमें जिन्नो बशर और सारी कायनात की कुवतें हेज हैं, और हर आंखों वाला देख कर ये समझने पर मजबूर हो जाता है कि रात की अंधेरी के बाद सुबह का उजाला पैदा करने वाला ना कोई इंसान हो सकता है, ना फरिश्ता, ना कोई दूसरी मखलूक, बल्कि ये सिर्फ उस माफोकुल इदराक हस्ती का काम है जो सारे जहान की पैदा करने वाली है, माफोकुल इदराक हस्ती, माफोक कहते हैं वो जो ऊपर है, फोक कहते हैं ना ऊपर को, अभी आप कभी लिफ्ट में जाएंगे ना बाहर निकलने के लिए तो अगर कोई अतिथि साहब आ रहे होंगे तो पूछेंगे कि फोक और तहत ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, क्या अगर आपको नीचे जाना होगा कहेंगे तहत, सही है, तो फोक का मतलब होता है ऊपर, इदराक का मतलब याफ्त, आपके बयान में भी एक बात अजीब है, वो बयान करते हैं अगर हमें अगले दिन काम आ रही होती है हम बयान करते हैं वो बयान तो उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, तो मोहब्बत कहते हैं इसको, मोहब्बत कहते हैं, ठीक है, तो आदर साहब ने शेर साहब ने कल क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला को पाने से इंसान बिल्कुल अपने आप को मजबूर समझ ले, मैं अल्लाह को नहीं पा सकता, हुआ सुबहाना हुआ तआला थुम्मा वरा उल वरा थुम्मा वरा उल वरा थुम्मा वरा उल वरा, वो तो सुबहान और तआला है, वो तो हर ऐब से पाक है, वो तो हर एक से बुलंद है, लेकिन इसके बाद हजरत मुजद्दद अल्फिसानी ने फरमाया थुम्मा वरा उल वरा, वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, यानी जब आप समझ रहे हैं यानी अल्लाह की हकीकत को समझ लिया कि हाँ वो तो सुबहान है वो तो तआला है, नहीं आपने नहीं समझा वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, अच्छा अब मैंने समझ लिया कि वो उससे ज्यादा बुलंद है, नहीं वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, जो अभी तुमने समझा है ना वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, अच्छा अब मैंने समझ लिया कि अल्लाह ताला कौन, नहीं वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, एंड इट नेवर स्टॉप्स, इट कैन नॉट स्टॉप, इसी को हमारे अजीज फरमाया करते थे, इसको कहते हैं हसरत नायाब, नायाब का मतलब उसको पा लेने से इंसान आजिज हो जाए, हसरत ही रह जाए कि मैं तो उस तक ना पहुंच सका, मैं तक उस तक ना पहुंच सका, क्योंकि अल्लाह की जात ऐसी है, ठीक है, तो इसी वजह से अल्लाह की जात का इदराक जो है ना ये हमारी अकल से ऊपर है, ठीक है, बेवकूफ होता है वो शख्स जो कहता है कि नहीं मैं अल्लाह को समझ गया, ठीक है भाई अल्लाह ताला की सिफात को थोड़ा बहुत समझ लेना, अल्लाह ताला के कलाम को जो है वो अपने रेलेवेंस में समझ लेना कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह का जो है वो मना अल्लाह ताला ने इन चीजों से किया है, हमारा करने का काम यही है, ठीक है, और इसके बाद फिर जो है वो मरने के बाद फिर बरजख की लंबी जिंदगी गुजारने के बाद फिर कयामत का लंबा दिन गुजारने के बाद जब अल्लाह ताला की रहमत से हम जन्नत में दाखिल होंगे ना जन्नत, तो फिर वहां पे अल्लाह ताला अपना इदराक करवाएंगे, अपना दीदार करवाएंगे, ठीक है, तो मोमिन के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन एक तो ये है कि वहां अल्लाह का दीदार होगा, दूसरी दूसरे नंबर की अट्रैक्शन क्या है, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम भी होंगे, ठीक है, तो क्यों ना हो जन्नत की तमन्ना जहां पे अल्लाह भी हो और उसके रसूल भी हो, यानी अल्लाह का दीदार भी हो, अच्छा तो ये सिर्फ उस माफोकुल इदराक हस्ती का काम है जो सारे जहान की पैदा करने वाली है, मखलूकात के आराम के लिए रात की कुदरती और जबरी तायीन एक अजीम नेमत है, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने एक हेडिंग लगाई कि रात की जो अल्लाह ताला ने जबरी, जबरी का मतलब होता है बाय फोर्स, फोर्सफुल, तो अल्लाह ताला ने डिटर्मिनेशन कर दिया ना कि ये रात है,
ये नेमत है अल्लाह ताला की। कैसी कैसी नेमत है ये, तो फिर आंख वालों को नजर आती है कि रात में भी कैसी नेमत। ठीक है, तो अल्लाह वाले थे तो उन्होंने कहा कि ये कैसी नेमत है अजीम। तो फरमाते हैं इसके बाद इरशाद फरमाया, वह जाला सकनन, कि लफ्ज सकना सुकून से मुश्तक यानी डिराइव है। हर ऐसी चीज को सकन कहा जाता है कि जिस पर पहुंचकर इंसान को सुकून और इत्मीनान और राहत हासिल हो। इसीलिए इंसान के रहने के घर को कुरान में सकन फरमाया है, जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया कि हमने के उसने बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून, सुकून की जगह, और बीवियों को भी, तस्कुनु इलैहा, ठीक, सुकून की जगह बनाया। अब बार बार वही पलट के वही पुरानी बात, यानी कुछ बातें रिपीट हो रही होती है ना, वो कदरतन अल्लाह ताला के निजाम है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था खुलासे तफसीर के अंदर कि रात को सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं, लेकिन फितने दज्जाल के दौर में नहीं आराम पाते, जागे हुए होते हैं रात को। ठीक है, उसी तरीके से फरमाया कि फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह ताला के सिवा जो है वो कोई फाड़ने वाली ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन फितने दज्जाल के जमाने में नहीं भी है फाड़ सकते हैं, हम भी बीज उगा सकते हैं, हम भी जो है वो क्लोनिंग करके जो है वो शीप बना सकते हैं, और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ह्यूमन सेल्स बना सकते हैं, बनाना कर सकते हैं। तो फितने दज्जाल की देखें रियालिटी, जो कि एक्चुअली दजल और फरेब होता है, वो हकीकत से बिल्कुल हटके एक चीज होती है। वही चीज अभी भी रिपीट हो रही है। ये फरमाया कि जाअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तो तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया, लेकिन आज के दौर में अक्सरियत जो है उनका क्या हाल है, घर के अंदर आते हैं एक नई आग लगी हुई होती है, राइट, बाहर अलग आगें लगी हुई होती है, घर में आते हैं एक नई आग लगी हुई होती है। वो आग जो होती है वो क्या होती है, टीवी, एक टीवी भी तो आग है ना, वो बैठ करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, वो रूहानी आग होती है जो कि उनके किए कराए को और जला करके भस्म कर देती है। घर में आके बैठते हैं तो वो खोल के बैठ जाते हैं, कुछ और इस किस्म की खराबात देखना शुरू हो जाते हैं, वो आग होती है जो कि उनके सुकून को बर्बाद कर देती है। ठीक है, जहनी सुकून, कल्बी सुकून, हर चीज को बर्बाद कर देती है। दूसरा ये कि घर के अंदर रहने वाले अफराद अक्सर ऐसा लड़ाई झगड़ा फसाद कि जिसकी वजह से घर में आकर के भी सुकून नहीं मिलता। ठीक है, हालांकि अल्लाह ने तो सुकून की जगह बनाया था, लेकिन जो शैतान की पैरवी करेगा, नफ्स की पैरवी करेगा, उसके लिए सुकून खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हजरत ने आगे फरमाया कि क्योंकि इंसान का घर ख्वा एक झोपड़ी ही हो, वहां पहुंचकर इंसान को आदतन, यानी आदतन के मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सुकून और राहत हासिल होती है। इसलिए मानी इस जुमले की ये हो गए कि अल्लाह ताला ने रात को हर जानदार के लिए सुकून और राहत की चीज बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात किए बगैर आजिस आगे नहीं बढ़ सकता कि अल्लाह ताला ने घर को सुकून और राहत की चीज बनाई थी। ठीक है, लेकिन मरदवे हमारे वालदा मुतामा कहते हैं मरदवे, राइट, मरदवों को कहा कि तुमने हर वक्त घर में नहीं रहना, वो तो आजकल वर्क फ्रॉम होम के मजे हम उठा रहे हैं ना, सब तो नहीं उठा रहे। ठीक है, तो तुमने घर से बाहर जाना है, क्यों जाना है, इसलिए कि तुम्हें जो है ना वो सजा मिली है, तुम्हें सजा मिली है, तुम्हारे अब्बा ने जो है ना वो जन्नत में फल खा लिया था, तो वहां से जो है ना वो भी मरद थे ना, मरद है, उनको कवाम बनाया था ना, उन्होंने फल खा लिया, बेहूं भी नहीं फल खा लिया। ठीक है, तो फल तो दोनों ने खाया था और उतारा भी दोनों को जन्नत से जमीन के अंदर, लेकिन ये जो बाहर की मुशक्कत है, फरमाया फतश आ, ये तुमने अकेले संभालनी है, ये तुमने अकेले झेलनी है आदम, ये फतश का जो है ना ये तुम दोनों के लिए नहीं है, कि लेना खरीजा कुमार, तुम दोनों को जो है वो बाहर निकाल देगा, फिर तुम दोनों के तुम्हारा तुम दोनों का वो दुश्मन है। यहां तक तो फरमाया दोनों दोनों दोनों, लेकिन आगे फरमाया फतश का, ये मुशक्कत आदम सिर्फ आपके लिए है, आदम सिर्फ आपके लिए, आप बाहर जाएंगे, आप धक्के खाएंगे, आप जो है वो गाड़ियों का धुआं सूंघेंगे, आप जो है वो गर्मी झेलेंगे, आप सर्दी के अंदर ट्रेंगे अगर शिकागो के अंदर हो और आप जो है वो लेक व्यू आपकी जॉब हो, तो इतनी सर्द हवा चल रही होती है कि लोग जो है ना वो इतना मोटा कोट पहन करके भी टकर टकर करके जो है वो अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं, ठीक है। अंदर जो है वो लाइनिंग पहनी हुई होती है, ऊपर से वो डबल डबल कोट पहने हुए होते हैं, ठोकते हुए जो है ऑफिस जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मशक्कत अल्लाह ने मर्द के लिए रखी, बेगम साहिबा ने घर में रहना है इत्मीनान के साथ, और जब उनको बाहर जाना होगा तुम ही लेकर के जाओगे इनको, ठीक है। ये नहीं के उबर बुलाएं और जाएं, करीम बुलाएं और जाएं, ठीक है, नहीं, तुम ही लेकर के जाना होगा इनको। अगर जन्नत चाहते हो, अगर जहन्नुम चाहते हो, तो फिर जो मर्जी आए तुम करो, फिर तो मैं तुम्हें जहन्नुम में निपटूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन जन्नत चाहते हो ना, तो बच्चों तुम्हें अपनी बेगम को लेके जाना होगा, तुम्हें अपनी बेगम की जरूरियात पूरी करनी होगी, तुम्हें अपनी बेगम की हद तक के जो जायज ख्वाहिशात हैं वो भी तुम्हें ही पूरी करनी होगी, मैं के भी तुम्हें ही लेकर के जाना होगा, उसको नहीं टिकट लगा करके भेज सकते हो तुम, ठीक है, तुम्हें ही सारा काम करना होगा फकत। लेकिन दज्जाली निजाम क्या है, ओए तुम बच्चे मार रही हो, घर में बैठ करके बच्चे मार रही हो, ओहो सारा पढ़ा लिखा जाया कर दिया तुमने, सारी अल्लाह की दी हुई सलाहियतें जाया कर रही हो, सारा ये जाया कर रही हो, वो जाया कर रही हो, बाहर निकलो भाई, तुम भी टुकड़ो लेक व्यू पे जाकर के, तुम भी टुकड़ करके ऑफिस जाओ अपने, तुम भी रियाज की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर जो है ना, तुम भी बाहर निकलो, गाड़ी चलाओ या जैसे भी जाओ, गाड़ी के दफ्तर के अंदर उनको उनकी क्यूबिकल के अंदर पहुंच जाती है क्या गाड़ी जिसके अंदर एसी चल रहा होता है, नहीं, गाड़ी तो एक सर्टेन तक जा सकती है, फिर तो बाहर ही निकलना पड़ता है ना, फिर उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर उन खातून मोहतरमा को भी जो है वो जल जला करके बिल आखिर अपने एयर कंडीशन ऑफिस में पहुंचना होता है। ये तो नहीं होता है कि बेगम साहब हैं तो इस वजह से कोई गर्मी वर्मी इनको नहीं लगेगी बाहर, जब बाहर निकलोगी तो तुम्हें भी लगेगी सारी की सारी गर्मी और सर्दी, ठीक है। तो ये दज्जाल का निजाम क्या करता है कि इंसान को धोखे में डाल देता है, उसका मकसद जिंदगी ही उलट देता है, जो उसके परवरदिगार ने बनाया था उसको उलट करके जो शैतान अपना कोई बना देता है ना अपनी तरफ से ताकि ये बर्बाद हो जाए, तो वो फिर उनका मकसद है जिनका, उस पर बड़ा फखर भी करवा देता है, यानी जो और बेड़ा गर्क जिनका हो जाता है ना, कुछ लोग तो होते हैं जो मजबूरन किसी वजह से उनको करना पड़ जाता है, तो वो कम से कम नादिर और शर्मिंदा तो होते हैं ना, ठीक है। नादिर भाई ऐसी तो नहीं चलेगी बात, ही क्या हो रहा है, तो जो नादिम और शर्मिंदा होते हैं वो तो मजबूरन ये काम कर रहे हैं ना, लेकिन शैतान वहां पे रुकता नहीं है कि बस गुनाह करवा दिया और बस पे खुश है कि जी नादिम और शर्मिंदा हो रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं कि नहीं तुम इस गुनाह को अच्छा भी समझना शुरू करो, फखर भी करना शुरू करो उसके ऊपर, ताकि तुम्हारा ईमान ही खत्म हो जाए। जब तक गुनाह करने वाला उस गुनाह के ऊपर नदामत रखता है, शर्मिंदगी रखता है, तो उस को ईमान उसका खत्म नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो गुनाह के ऊपर फखर करना शुरू हो जाए, खुश होना शुरू हो जाए, अब वो ईमान से फारिग हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका ईमान। तो शैतान जो है वो खाली गुनाह करवाने के ऊपर रुकता नहीं है। उसी तरीके से आज देख ले, औरतें खुद बड़ा जबरदस्त, हाँ हम अपने मकसद जिंदगी, तो वो लतीफा आपको फिर सुना देते हैं कि वो चंद खवातीन जो है वो बैठी हुई थी, तो एक खातून ने कहा अपने दोस्तों से ये बड़ा हट हराम है, बैठा रहता है, बैठा रहता है और बस मुझे जो है ना वो ऑर्डर देता रहता है और खुद कुछ काम नहीं करता है। तो दूसरी जो सहेलियां थी ना उसकी, फौरन तलाक ले लो उसे, खुला फाइल कर दो, टेक हिम टू कोर्ट, ऐसे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसने जवाब दिया कि मैं अपने खावन की बात नहीं कर रही, मैं तो अपने बॉस की बात कर रही। तो सब नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये तो करना पड़ता है, ये सब तो सहना पड़ता है, ये तो बहुत जरूरी है, करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई बात नहीं, सब्र कर लो, बॉस की बातें तो सहनी पड़ती है, ठीक है। तो बॉस की चाहे वो जो भी करे वो अच्छा बना करके पेश कर दिया, और खाविंद उसकी जो भी बात हो ना, चाहे अच्छी बुरी ना भी हो, बुरी हो तो वो तो बुरी लगनी भी चाहिए, बुरी होती भी है, खैर अल्लाह के साथ से उम्मीद रखते हुए सबर कर लेना उसके ऊपर अजर मिलता है, लेकिन अच्छी भी बात बुरी लगनी शुरू हो जाती, जायज बात भी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? शैतान की वजह से। शैतान की वजह से, शैतान हमें इस तरीके से धोखे में डालता है। ठीक है, लिखा उन्होंने कि बाहर काम भी करना है, और कहती है कि अपनी कमाई अपनी ही होती है, शौहर का पैसा शौहर का होता है, वो खर्च नहीं कर सकते। जाहिल होते हैं तो उनका क्या किया जाए, इल्म हासिल करना चाहिए, शौहर के पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं। पता तो नहीं किसने जो है ना, वही शैतान इस तरह की बातें डाल देते हैं कि शौहर शौहर का पैसा खर्च नहीं कर सकते। अपनी तरफ से बनाए नबी अलैहिस्सलाम से हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि शौहर की इजाजत के बगैर उनका पैसा लेके खर्च कर सकती हूँ? अगर मैं ले सकती हूँ इजाजत के साथ तो बिल्कुल, लेकिन इजाजत के बगैर ही दे सकती। ठीक है, चोरी नहीं कहलाएगी, यानी जरूरत के लिए अपने खर्चे के लिए ले सकती हो। ये तो शैतान ने जो है बोला, नहीं शौहर का पैसा तो शौहर का पैसा होता है, जकात नहीं देनी अपनी। ये नहीं कि जकात में जो है वो अपनी जकात खुद दे, वो तो शरीयत ने, क्योंकि शरीयत ने किया है ना कि जी सर बेगम को अपनी जकात खुद अदा करनी चाहिए, शौहर अदा कर दे तो उसका एहसान है, वहां पर अदा नहीं कर दी क्योंकि वो शरीयत ने जो कह कह दिया है। वहां पे तो शौहर मेरी ज़कात भी अदा करे, सही। मसला क्या है? मसला शौहर की आमदनी के साथ मसला नहीं है, शौहर की कमाई के साथ मसला सारा शरीयत के साथ है, मसला सारा सारा अल्लाह के हुक्म के साथ है। क्यों? इसलिए शैतान को मसला अल्लाह के हुक्म के साथ है, शैतान ने सारा मसला किया हुआ खड़ा। तो जहां अल्लाह का हुक्म टूटेगा वहां वो जो उल्टी बात करेगा, और जहां अल्लाह का हुक्म नहीं टूट रहा होगा वहां पे जो है वो मजे मजे की बातें करेगा, अल्लाह के हुक्म के साथ उसको मसला है सारा का सारा। तो बनी आदम को भी इसी तरीके से करवाते हैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। तो आगे फरमाते हैं कि इस तरफ उन्होंने जहाल लैला सकन, अल्लाह ताला ने फरमाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया कि जिस तरह दिन का उजाला एक अजीम नेमत है कि उसके जरिए इंसान अपने सब कारोबार करता है, इसी तरह रात की तारीकी को भी बुरा ना जानो, वो भी एक बड़ी नेमत है कि इसमें दिन भर का थका मानदा इंसान आराम करके इस काबिल हो जाता है कि आइंदा कल में फिर निशात और चुस्ती के साथ काम कर सके, वरना इंसानी फितरत मुसलसल मेहनत को बर्दाश्त नहीं नहीं कर सकती। ठीक है, हजरत ने बहुत सादा अल्फाज में लिख दिया, मुसलसल मेहनत करते रहोगे, दिन में भी काम रात में भी काम, तो थोड़े दिन में एक्सपायर हो जाओगे तुम। ठीक है, तो रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, आराम कर लिया करो खुदा के बंदे। ठीक है, रात की तारीकी को राहत के लिए मुतय्यन कर देना एक मुस्तकिल नेमत और अल्लाह ताला की कुदरत काहिरा का एक खास मजहर है। मुस्तकिल यानी एक 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 इन ऑफ इटसेल्फ एक नेमत है ना अल्लाह ताला की, और अल्लाह की कुदरत काहिरा है कि कैसे जमीन को ऐसे जो है वो रिवॉल्व करता है अल्लाह ताला के, सूरज छुप जाता है, रात आ जाती है, फिर उसके बाद जो है वो मजीद जो है वो घूमती है जमीन, और सूरज फिर से सामने आ जाता है, और रात आ जाती है और दिन आ जाता है, मगर ये नेमत रोजाना बे मांगे मिल जाती है। नहीं, बे मांगे, हमें इसके लिए दुआएं नहीं मांगनी पड़ती है, हमें इसके लिए मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती, बे मांगे मिल जाती है। इसलिए इंसान का ध्यान भी कभी नहीं जाता कि ये कितना बड़ा एहसान और इनाम है। गौर कीजिए कि अगर हर शख्स अपने इख्तियार और इरादे से अपने आराम का वक्त मुतय्यन करता, तो ये आगे एक लंबी बात चल रही है, तो इससे पहले ये बात जरूरी है कि कुछ नेमतें होती हैं ना जो कि बड़ी मेहनत करके मिलती हैं, तो फिर भी कुछ इंसानों को उनकी कदर होती है। ठीक है, लेकिन जो बिन मांगे मिल गई, बगैर मेहनत की मिल गई, तो उसको तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हालांकि उन नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला की वो रजा मिलती है कि जो कि आम तौर पे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नेमतें जो है ना ये आम बंदा इनको इग्नोर कर रहा होता है और उनकी कदर नहीं कर रहा होता। इसी वजह से ये दुनिया की नेमतें भी, जैसे ये दुनिया की नेमतें कि रात दिन बिन मांगी मिल रही है, भाई कौन शुक्र अदा करता है इनके ऊपर? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दिन अता फरमा दिया, एक नया दिन नई सुबह अता फरमा दी, ऐ अल्लाह रात को मुझे सोने की तौफीक अता फरमा दी कि जिससे कि मेरा पूरा सिस्टम जो है वो रीसेट हो गया है, मुझे सुकून मिल गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सोने और जागने के ऊपर अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, सना करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम जैसे। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने से पहले, क्योंकि सोने के बाद तो नहीं दुआ इंसान आदतन मांग सकता है ना, वो सोने से पहले दुआ अल्लाह ताला को याद करते थे। ठीक है, मैं तेरे नाम के साथ मरता हूं, मैं तेरे नाम के साथ जीता हूं, और जागते ही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन्नुशूर। जागते ही सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना, तो सोते जागते अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करना, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अभी दिली दिल में दुआ मांग लें, ऐ अल्लाह मुझे भी ऐसे बदलताने की तौफीक अता फरमा दिए कि हर वक्त हर आन में आपकी तारीफ किया करूं, ठीक है। तो नेमतें गैर मुतरक्का हम भी कहते हैं ना, बगैर फिर मांगे कि जो मिल गया ये है, तो उसमें फिर बहुत से लोग गफलत में मुब्तला हो जाते हैं ना, उनका शुक्र नहीं करते। इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली बोले अंग्रेजी का एक मुहावरा है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि शुक्र कमी होती है। तो चिराग तले अंधेरा, ये भी एक उर्दू का मुहावरा है कि जहाँ चिराग होता है ना चिराग, लेकिन चिराग इस तरह से होता है कि वो एक एक प्याला सा होता है, कटोरी सी होती है, उसके अंदर चिराग जला होता है। तो अब ये कटोरी जो होती है ना, ये उसकी रोशनी को छुपा लेती है कि वो नीचे पहुंचे, तो उसके नीचे जो है ना फिर अंधेरा होता है। हालांकि उस चिराग की वजह से पूरा जहान रोशन हो रहा होता है, ऊपर का सब सब कुछ रोशन हो रहा होता है, लेकिन उसके अपने नीचे राइट अंडर इट्स ओन नोज अंधेरा होता है। ये मुहावरा है उर्दू का, ठीक है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपना बयान फरमाते हैं ना कि अल्लाह की मिसाल जो है गोया के एक मसले नूर का मिश्कात है, तो एक ऐसे जगह पर है, एक ऐसे जो है वो क्या कहते हैं, जब दीवार के अंदर जो वो एक बना होता है ताक, ठीक है। तो वो यानी इसकी दायरे तफसीर के भी ध्यान में भी नहीं है, लेकिन एक जैसे शीशे के अंदर होता है, ठीक है। अब शीशे के अंदर कोई चिराग होगा तो उसके तले अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसकी लाइट तो फिर हर डायरेक्शन में जाएगी ना। क्या मदीना मुनव्वरा में उन्होंने एक म्यूजियम बनाया, तो उसके अंदर उन्होंने एक चिराग लगाया, सूरह नूर के नायात के जो है ना वो गया के मैनिफेस्टेशन, वो शीशे के अंदर है वो चिराग, ठीक है। तो उसके चारों तरफ जो है वो रोशनी फैल रही है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंसानों के साथ ऐसे ही होता है कि अब घर वाले होते हैं वो कदर नहीं कर रहे होते, करीब वाले होते हैं वो कदर नहीं कर रहे होते, दूर वाले कदर कर रहे होते हैं, जो कि हजारों मील दूर है वो बड़े गौर से बात भी सुन रहे हैं, वो उसके ऊपर अमल की भी कोशिश कर रहे हैं, वो दुआओं में भी शामिल हो रहे हैं, जो घर बैठे हैं वो नहीं, तो रोजाने की चीज है। इसी वजह से हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह की अजीब अल्लाह ताला ने क्या हजरत जी को, मैं कहता हूँ मैंने कुछ साथियों से कहा भी ना उमरा करके जब फारिग हुए, तो सारी उसके दिल में एक बात है, मैंने कहा देखें जो दीनदार लोग होते हैं ना, अल्लाह वाले लोग होते हैं, तो उनकी तो कदर होती है और लोग उनको पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, दूर दूर से उनकी तरफ जो है खींचे चले आते हैं। हम अपने मशायख को ऐसे ही देख, हजरत जी को भी ऐसे ही देख रहे, ठीक है। लेकिन अपने घर के अंदर इतनी मोहब्बत का होना, अपने घर वालों में, अपनी औलादों में, अपनी औलादों की औलादों में, अपने घर की खवातीन के अंदर इतनी मोहब्बत का होना, ये कहाँ मिलता है, ये नहीं नजर आता। क्यों? इसलिए वही चिराग तले अंधेरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ भाई, ये तो हमारी घर की चीजें हैं, इनको तो हम सुनते ही रहते हैं, इनकी तो बातें चलती ही रहती हैं, हम तो बचपन से सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी नई बात हो गई, ठीक है। तो वो मोहब्बत में कमी आ जाती है करीब वालों के अंदर, ठीक है। लेकिन अल्लाह से टूट के मोहब्बत करने की एक निशानी ये भी हो गई ना फिर, कि जैसे अल्लाह के में चिराग तले अंधेरा वाला मामला नहीं होता, तो ऐसे अल्लाह वालों के भी फिर चिराग तले अंधेरा का मामला नहीं होता है। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, एक्सेप्शन होती है, लेकिन वो बस, ठीक है। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे, काश। तो फरमाते हैं कि ये नेमत रोजाना बेमांगे मिल जाती है ना, इसलिए इंसान का ध्यान भी कभी नहीं जाता कि कितना बड़ा एहसान और इनाम है। गौर कीजिए कि अगर हर शख्स अपने इख्तियार और इरादे से अपने आराम का वक्त मुतय्यन करता, तो कोई सुबह को 8 बजे सोने का इरादा करता, कोई 12 बजे सोने का इरादा करता, कोई जो है वो 4 बजे सोने का इरादा करता, कोई रात के मुख्तलिफ हिस्सों में सोता, जिसका नतीजा ये होता कि रात दिन के 24 घंटों में कोई भी ऐसा घंटा ना आता जिसमें इंसानी कारोबार, मेहनत मजदूरी, कारखाने और फैक्ट्रियां ना चल रही होती, जिसका लाजमी नतीजा ये होता कि सोने वालों के आराम में भी खलल आता और काम करने वालों के काम में भी, ठीक है। यानी कोई टाइम फिक्स ना होता ना सोने के लिए, जागने के लिए, तो कोई कभी सो रहा होता, कोई कभी जो है वो सो गया, कोई कभी जाग गया, कोई कभी कुछ कर रहा है, कोई कभी कुछ कर रहा है, तो एक सिस्टम नहीं होता, एक निजाम नहीं होता। तो उससे क्या होता कि भाई ना फैक्ट्रियां चल रही होती, ना कारखाने चल रहे होते, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि सोने वालों के आराम में भी खलल आता। भाई कोई सोना चाह रहा है, बाकी सब जागे हुए, तो उसको सोने नहीं दे रहे। बच्चों का शोर, लोगों की बातचीत चल रही है, वो सो नहीं पा रहा बेचारा, और काम करने वालों के काम में भी, ठीक है, सोने वालों के आराम में, काम करने वालों के शोर और शबक और खड़के और धमाके मुखर होते हैं। हमारे घर आकर के रात को जरा सोने की कोशिश करें उमर भाई, हंस रहे हैं। सारी रात जो है ना वो मोटरसाइकिल की धमाके की आवाजें आती रहती हैं, गाड़ियों की आवाजें आती रहती हैं, है ना। बदबख्त लोग जो है वो रात दिन को सो रहे होते हैं, रात को जो है वो मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ियां चला रहे होते हैं, हमें भी नहीं सोने देते। बच्चे डर के उड़ जाते हैं, यकीन करें। अच्छा, मैंने भाई से कहा कि ऐसा करते हैं ना, हम एक कैंपेन चलाते हैं कि हम एक वो ना वो खुद तो वो नहीं कर सकते, हम तो खारजी हैं, तो हम ना अरबी में एक लेटर तैयार करते हैं और सऊदियों से उसके ऊपर दस्तखत करवाते हैं जो इलाके में, क्योंकि सऊदी भी तो बहरहाल वो भी तो इंसान है ना, तो ये धमाकों से जो है उनकी भी नींद खराब होती होगी, तो हम उनसे जो है ना क्या कहते हैं उसको पिटिशन साइन करवाते हैं, ठीक है, और फिर जो है ना वो पुलिस वालों को देते हैं कि भाई ये लोगों को बंद कराओ यार, ये क्या तमाशा लगा रखे, ठीक है। तो वाजिद ने बड़ी मजे की बात की, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो वैसे ही पूरे निजाम के खिलाफ हाथ धो के पड़े हुए हैं, और ये खुद तो नहीं ये लड़के कर रहे हैं, से खुद तो नहीं कर सकते काम। कहते हैं कैनेडा में जो है ना लोगों ने कोशिश करी थी, कैनेडा बड़ा अच्छा मुल्क, राइट, बड़ा जो है वहां पे वो निजाम है, ये है वो है, तो वहां पर भी एक जगह बता रहे थे वे ने थोड़े दिन पहले, तो वहां पे भी एक जगह है कि जहां पे रातों को लोग जागते हैं और वहां के रहने वालों की नींद जो है वो खराब होती है, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोग वहां पर कि किसी तरीके से इन सबको बंद करवाएं, इन रेस्टोरेंट्स को बंद करवाएं। कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, वहां का जो मेयर है वो नहीं कर पा रहा ये वाला काम, ठीक है, तो जो शैतान की मानेगा तो वो शैतान उसके ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वो अच्छा काम कोई करना भी चाहेगा ना, क्योंकि तुमने तो मान के उसकी चलनी है, तो अब तुम अपनी कुछ अच्छी काम करना भी चाहोगे ना तो तुम नहीं कर सको, ठीक है, ये उसूल की बात है, तो शैतान की हमने बिल्कुल भी नहीं माननी है, थोड़ी सी भी मान लेंगे ना तो अल्लाह ताला नाराज होकर कहीं हमें उसके हवाले ही ना कर दे, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ये तमाशे होते रहते हैं, तो फरमाते हैं कि जो इस वक्त सो रहे हैं ना, तो उसके अलावा सोने वालों के बहुत से वो काम रह जाते हैं जो उनके सोने के वक्त में ही हो सकते हैं। अल्लाह जल्ला शानों की कुदरत ताहिरा ने सिर्फ ना सिर्फ इंसान पर बल्कि हर जानदार पर रात के वक्त नींद का गलबा ऐसा मुसल्लत कर दिया कि वो काम छोड़कर सो जाने के लिए मजबूर होता है, ठीक है, यानी देखें ये मजबूरी है ना, बाय फोर्स है ना, लेकिन हर मजबूरी गलत नहीं होती, हर मजबूरी हर फोर्स जो है वो बुरी नहीं होती, अगर वो आपसे ज्यादा इल्म वाले की तरफ से आ रही है और आपके किसी खैरख्वाह की तरफ से अगर आपके ऊपर पाबंदी आ रही है, ठीक है, तो वो पाबंदी जो है वो आपको बेशक अच्छी ना लगे कि यार ये क्या मुसीबत है, ऊपर से उसको बोलते रहते हैं कि अभी सो जाओ, अभी जाग जाओ, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, लेकिन भाई वो आपसे ज्यादा इल्म समझ वाले हैं, और खाली इल्म समझ वाले नहीं बल्कि वो आपके खैरख्वाह भी हैं, आपसे मोहब्बत है उनको, आपसे कोई नफरत की थोड़ी है, कोई दुश्मनी की थोड़ी है, ठीक है। तो छोटे बच्चे छोटी बच्ची जैसे अकल वाले जो है वो बड़े भी हो जाते हैं ना, बच्चे अकल वही वो कहते हैं बर्ड्स ब्रेन, ठीक है ना, एक चिड़िया की चिड़ी का जितना दिमाग होता है ना वो बड़े भी हो जाते हैं तो उनके दिमाग चिड़ी जितना दिमाग ही रहता है उनका, उनको बात ही समझ में आ रही होती, कहते हैं हर वक्त क्यों टोकते रहते हैं, हालांकि टोक नहीं रहे होते, एक दफा सालों में कभी एक दफा उनको टोका होता है, वो कहते हैं हर वक्त क्यों टोकते रहते, वो चिड़ी दिमाग वाले लोग होते हैं, हमें पनाह मांगनी चाहिए चिड़ी दिमाग से भी, इतनी उम्र हो गई, इतनी दाढ़ी न करा, इतना ये हो गया, उतना हो गया, लेकिन बात नहीं समझ में आकर के दे रही, ठीक है, तो वो ऐसे ही जो है ना वो नाराज होते रहते हैं, भाई आपके खैरख्वाह हैं यार, वो क्या क्या मुझे मिलेगा यार, मुझे आपको बता करके कि ऐसा ना करो यार, तुम्हारा अपना नुकसान है, क्यों कर रहे हो अपना नुकसान, ठीक है। इल्म वाला तो आप मानते हैं, जब भी तो आकर के बैठे हुए होते हैं बात सुनने के लिए, जाहिल समझते तो क्यों आकर के बैठते हैं बयान के अंदर बात सुनने के लिए, अगर किसी और के वाला समझो उधर जाकर के बात सुनो ना, फिर जाकर के इधर क्यों आ जाते हो, इधर आते हो तो फिर हम तो ये समझेंगे ना कि अच्छा तुम इन बारा समझते हो, तो हम अब अच्छे गुमान के साथ आपको फिर कोई बात बता देते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, वहां पे नाराज होना शुरू कर देते हैं, बात नहीं मानते बिल्कुल, ठीक है। तो ये बचकाने किस्म की बातें होती हैं, मैं तौबा करनी चाहिए इनसे, तो फरमाते हैं कि भाई ये सोने के लिए जो तो मजबूर अल्लाह ताला ने किया है ना, तो ये फायदा है हमारा, ये हमारे फायदे में है, ठीक है, हर मजबूरी जो होती है वो नुकसान वाली मजबूरी नहीं होती है। तो फरमाते हैं कि शाम होते ही हर परिंदा दरिंदा और चौपाए अपने अपने मुस्तकर और घर का रुख करते हैं, हर इंसान जबरी तौर पर काम छोड़कर आराम की फिक्र में लगता है, पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा जाता है। आए कहाँ गई वो दुनिया। ये बाहर निकल तो है वैसे थोड़ी सी दुनिया भी, लेकिन वो रेगिस्तानों में जाना पड़ेगा, जरा दूर जाना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा जाता है, रात की तारीकी नींद और आराम में मुईन व मददगार साबित होती है, क्योंकि आदतन ज्यादा रोशनी में नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखें आखिरी बात आज की क्लास के लिए, उम्मीद है कि आखिरी ये क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, कि ये जो फोर्स किया जाता है ना चीज को ऊपर से, ठीक है, कौन फोर्स करता है? जिसके पास इल्म ज्यादा होता है, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, यानी जिसको अरबी में सुल्तान कहा जाता है, फोर्स ताकत, चाहे वो फिजिकल ताकत हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल ताकत हो, इल्म एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ताकत ही है। गोरे भी कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जिस वजह से हम उसको नॉलेज को पावर ही कहेंगे, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, ठीक है, जिसके पास नॉलेज होती है। और जो खैर ख्वाह होता है तो फिर वो निजाम, वो फोर्स जो करते हैं ना, तो फोर्स करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब आप एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, एक निजाम बना रहे हैं। इसी वजह से उर्दू का जो लफ्ज है निजाम, निजाम कहां से निकला? नज़म से निकला, नज़म, ठीक है, नज़म, नज़्म ज़ब्त भी कहते हैं इसको, नज़्म डिसिप्लिन, ठीक है। तो वेयर देयर इज ए डिसिप्लिन, यानी ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं, तो उन डायरेक्शंस को जब फॉलो किया जाता है तो एक नज्म व ज़ब्त बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक जो है वो निजाम बन जाता है, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट क्या चीज है, इसकी अज़दादेहा क्या है? अल अशियाओ उरफू बे अज़दादेहा, तो इसकी जिद क्या है? कि जहां पे कोई निजाम ना हो। तो क्यों नहीं निजाम है भाई? इसलिए कि वहां पे कोई बड़ा नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है, कोई डायरेक्शंस देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो जाहिर है जब कोई वन अथॉरिटी, वन सिस्टम नहीं, जो वन पर्सन नहीं होगा, तो फिर नजर नहीं बन सकेगा ना, तो वो बदनज़मी कहते हैं ना, फिर उसको बदनज़मी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अंग्रेजी में केओस होता है और उर्दू में क्या होता है, फसाद। और अल्लाह ताला फसाद के साथ क्या करते हैं? इन अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि निजाम जो है वो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी नतीजा बनता है, अल्लाह ताला की रजा का भी नतीजा बनता है, और जहां निजाम ना हो तो वहां पे फसाद होगा, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते, ठीक है। निजाम ये अल्लाह ताला कैसे बनाते हैं, अल्लाह ताला की क्या सुन्नत है कि दुनिया के अंदर निजाम कैसे बनते हैं? अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जो है वो बड़ा बना देते हैं, ऊंचा बना देते हैं, ज्यादा इल्म दे करके, ज्यादा समझ दे करके, ठीक है ना, उनको फौकियत दे देते हैं, बाकी लोगों को उनके नीचे कम तहत कर देते हैं। अब वो जो बड़ा होता है वो फिर उनको कहता है कि भाई ऐसे करो ऐसे ना करो, इससे जो है वो निजाम बन जाता है, इससे ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इस तरफ में आज आना चाह रहा है वो ये है कि इस निजाम का ताल्लुक जो है ना, ये किसी किताब के साथ खाली नहीं होता कि जी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों क्यों नहीं होता किताब के साथ? क्योंकि किताब जो है वो कम से कम नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में आ जाने के बाद से किस शक्ल में हो गई? कंपाइल्ड शक्ल में हो गई। पहले की किताब किसके पास थी? उलमाए बनी इसराइल के पास थी, और उन्होंने क्या उसके अंदर डंडी मारी हुई थी, अभी पढ़ा है ना, क्या डंडी मारी हुई थी उसको? पराफ्रीस में रखा हुआ था, ठीक है, पेपर्स में रखा हुआ था, पेजेस में रखा हुआ था, कंपाइल नहीं किया हुआ था। तो दो चीज दिखाना चाहते दिखाते, बाकी चीजों को छुपा लेते थे, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ कि सहाबा ने छूटते पहली फुर्सत के ऊपर उसको कंपाइल किया। किसने किया? अबू बकर से। उम्मती ने किया, नबी ने नहीं किया, उम्मती ने किया ये वाला। ठीक है, पहली फुर्सत में कंपाइलेशन हो रही है। ठीक है, तो अब जब कंपाइलेशन हो गई तो अब तो ये एक्सेसिबल हो गई ना, राइट। उस्मान अली के जमाने में तो फिर हर जगह उसकी कॉपीज भी पहुंचा दी गई, और फिर कॉपीज की कॉपीज की कॉपीज की कॉपीज की कॉपीज की कॉपी, हर उम्मती के पास किताब मौजूद। तो अब अगर हर उम्मती ये कहे कि किताब तो है मेरे पास, जैसे कि आज भी कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अकल होती नहीं है तो इस तरह की बातें करते हैं, जाहिर सी बात, किताब है मैं पढ़ूंगा, मैं खुद ही फॉलो करूंगा, ठीक है, मैं खुद ही जो है वो हिदायत पा दूंगा। तो फिर जब हर बंदा खुद किताब को पढ़ करके खुद जो है वो उसको अपने हिसाब से फॉलो करेगा तो निजाम बनेगा। तो हर बंदे का अपना एक निजाम होगा ना भाई, राइट। हर बंदे का अपना एक निजाम होगा, तो फिर जब हर बंदा अपना एक निजाम चलाएगा तो फिर क्या होगा, फसाद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किताबों से निजाम नहीं बनता, कि किताब तो है मैं भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लेगा निजाम बन जाएगा। अल्लाह के बंदे, किताब से निजाम नहीं बनने वाला है। अगर बनना होता ना तो फिर बहुत अच्छा बन चुका होता, बहुत किताबें मौजूद है और आजकल तो हर जगह मौजूद है, हर एक के पास फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है। निजाम बनता है बंदे से, इंसान से निजाम बनता है। क्या मतलब? इंसान है तो निजाम है, इंसान से हट करके निजाम ही बना सकते हैं, निजाम ही बनेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने निजाम के अंदर निजात रखी है और निजाम के बगैर फसाद। ठीक है, ये आजिज ये बातें क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, मैसेज आया हुआ है, ऑफिस वर्क के बाद, इशा के बाद, रात में बच्चे सो जाने के बाद मुराकबा का कुछ जिक्र का दुआ का टाइम सही लगता है अक्सर सोने में। ये किताब आप क्लास के बाद ये सवाल क्यों नहीं करते? ये तो आपके साथ ही मुराकबे का सवाल है ना। ठीक है, हमने आपको क्लास में उसूल बताया ना, उसको गौर से सुने, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। रात सोने का वक्त होता है और दिन काम करने का वक्त होता है। अच्छा, तो हम आपको ये बात क्यों कर रहे हैं कि कुछ दोस्त हैं बेचारे, बात समझ में नहीं आती उनको। ठीक है, तो वो ना निजाम को खास नहीं डाल रहे, को अहमियत नहीं दे रहे, वो समझ रहे हैं कि हम भाग भाग करके जो सवाब कमा रहे हैं ना, भाग भाग करके उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, वो हमें बचा देगा। तो इसके ऊपर जो है ना, हमारे मचाए पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है। नूह अलैहिस्सलाम, पीछे आप लोगों को समझाया ना फितने दज्जाल से बचने के लिए क्या कहफ। ठीक है, इसी की दूसरी मैनिफेस्टेशन जो है ना कुरान मजीद के अंदर, वो तूफान नूह की भी है। तूफान नूह क्या था कि जिसके अंदर ऐसी मौजें थी कि जिससे कोई भी नहीं बच सकता सिवाय किसके, कश्ती में सवार जो हो उसके, कोई भी नहीं बच सकता उस मौत से। लेकिन क्या किया नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने? तो इन आयात को जरा हम आपके सामने रख के फिर तो इसके बाद बात खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहिया तजरी बिहिम फी मौजन कल जिबाल, कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी ना, जब तूफान नूह आ गया तो उन्होंने कहा कालर इरकबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, अल्लाह का नाम लेकर के उन्होंने लोगों को सवार किया, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। ठीक है, इसका चलना भी अल्लाह के नाम से है और लंगर डालना भी, यकीन रखो कि मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये किया, सवार हो गए, कश्ती चल रही है। ठीक है, अब जो है वो ही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जबाल, पहाड़ जैसी मौजें मौजें उठ रही हैं, कश्ती में नहीं आ रही। ठीक है, ये उस जमाने का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, अमेरिका का बनाया है, मौजें भी आती हैं और फिर जो है ना वो नीचे गिर जाती हैं, ये उस जमाने की कश्ती थी। ठीक है, लेकिन इन पहाड़ जैसी मौजों की वजह से इस कश्ती को कुछ नहीं हो रहा, चल रही है कश्ती। ठीक है, तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल वनादा नूहुब्नहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को, जिनके बारे में उन वो खैर ख्वाह थे, जिसके बारे में जिससे मोहब्बत थी उनको, पुकारा उसको, कहा काना फी माजिन, जो कि कश्ती से उतरा हुआ था, वो कश्ती में नहीं चढ़ा था, अजल उतरा हुआ था वो। काना फी माजिन या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया कम माना, हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ, इस निजाम के अंदर आ जाओ, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से, अपने बड़े के हुक्म से मैंने बनाई है, मैंने अपनी ख्वाहिश की वजह से कश्ती नहीं बनाई है, राइट। मैंने अपने शौक की वजह से, कि मुझे सेलिंग का शौक हो रहा था, मैंने इस वजह से कश्ती नहीं बनाई है, मैंने बड़े के हुक्म पे ये कश्ती बनाई है, मुझे इजाजत और खिलाफत ऊपर से मिली है ये काम करने के लिए। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम माल काफरीन, और मेरा इनकार करने वालों में तुम मत शामिल हो जाओ। मेरा इनकार, काफिर किसको कहते हैं? नबी का इनकार करने वाले को। मेरा इनकार मत करो, मेरी बात का इनकार मत करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें नहीं पता क्या हकीकत है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं क्या हकीकत है, तुम्हें नजर नहीं आ रही। डोंट ट्रस्ट योर आइज, डोंट ट्रस्ट योर फाइव सेंसेस, मेरे ऊपर एतमाद कर लो, कुफर ना करो, इनकार ना करो, मेरा डिनायल फेज में ना चले जाओ तुम मेरे। वला तकुम माल काफिरीन, काला क्या कहता है वो, सआवी इला जबनी, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, नेकिया करूंगा मैं। आजकल दीनदारों के लिए पहाड़ क्या है? नेकियों का पहाड़। मैं नेकी करूंगा, मैं उम्रे करूंगा, मैं पुराने काम करूंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है, मैं उधर चढ़ जाऊंगा, नेकी के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो अभी इधर जब नहीं, या असीमोरी मिनल्मा, ये जो आप बकते रहते हैं ना, ये फितने दज्जाल जो डुबो रहा है हर एक को, सुबह को ईमान वाला, रात को काफिर, रात को ईमान वाला, सुबह को काफिर, ये वो तूफान है नूह का पानी, मैं बच जाऊंगा इससे नेकियां करके, मैं बच जाऊंगा। आसिम अलियम, सलाम ने फरमाया, आज के दिन कोई नहीं बचेगा, इस फितने में कोई नहीं बचेगा, मिन अम्रिल्लाह इल्ला अमर रहीम, अल्लाह के हुक्म से ना कोई नहीं बचेगा, जब सवाई जिसको अल्लाह बचाना चाहे ना, एज एन एक्सेप्शन, कि हाँ वो सवार हुए बगैर भी बच जाए, लेकिन जिसके सामने अल्लाह ताला नेमत प्रेजेंट करे और वो नेमत का इनकार कर दे, वो इल्ला मन रहम के अंदर नहीं आता, उसके ऊपर तुम्हें अजाब आता है ना, जिसको कि नेमत प्रेजेंट हो, भाई जिसके सामने नेमत नहीं आई, अल्लाह ताला उसको बचा सकते हैं, बचाना चाहे बचा सकते हैं, उसने तो कुफरान ने नेमत नहीं किया ना, उसके सामने तो निजाम का अल्टरनेटिव नहीं था ना, तो अल्लाह ताला एज एन एक्सेप्शन ऐसे शख्स को बचा देंगे, लेकिन जिसके सामने निजाम का अल्टरनेटिव है, उसको खोल खोल के बातें समझा दी गई हैं, और वो कहे नो आई डोंट वांट इट, मैं चढ़ जाऊंगा पहाड़ के ऊपर और मैं बच जाऊंगा इससे, नहीं, आज के दिन इस फितने से कोई भी नहीं बचेगा। वहाना बैनहुमा अलमौजू फकान मिन अलमुग्रकीन, तो वही हुआ कि इन दोनों के दरमियान हायल हो गई मौज और वो गर्क हो जाने वालों में से हो गया, मर गया वो बदबख्त, इसने कदर ना करी अपने बाप की, कदर ना करी वक्त के नबी की, कदर ना करी इस नेमत की, कदर ना करी जो कि अल्लाह ने उसको दी थी। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, नूह नादा नूह रब्बहू, नूह ने अपने रब से कहा, वकाल रब्बी इन अपनी मिन अहली, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, मेरा बेटा तो मेरे खानदान में से था, वो इन वादा तक वादा तक वादा कर था, और बेशक आपका वादा तो सच्चा होता है, आपने तो कहा था आप मेरे अहले खानों को बचा लेंगे, वो अंत अहकमुल हाकिमीन, और आप तो सबसे बड़े हुक्म करने वाले हैं, सारे हुक्म करने वालों से ज्यादा बड़े हुक्म करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, काला या नूह, ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नहीं, तुम्हारा अपना सगा बेटा था, लेकिन वो तुम्हारे अहल वयाल में से नहीं, तुम्हारे घर वालों में से नहीं, क्यों नहीं था अल्लाह,
عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل جو تھا نا وہ نیکی والا عمل نہیں، وہ سمجھ رہا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا اور تمہارے نظام کے بغیر ہی وہ بچ جائے گا، کشتی کے بغیر ہی وہ بچ جائے گا، یہ اس کا گناہ تھا جس کو وہ نیکی سمجھ رہا تھا، جس کو وہ نجات کا سبب سمجھ رہا تھا، یہی اس کا گناہ تھا، یہی اس کا گناہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام عطا فرمایا ہمارے مشائخ کے واسطے سے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھاگ کے جا کر کے کوئی بڑی والی کوئی نیکی کر کے آ جائیں گے، پتا بھی نہیں ہے پہنچو گے ادھر کے نہیں پہنچو گے، ابھی ایک انڈین فیملی کا جو ہے وہ راستے کے اندر انتقال ہو گیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکراتے ہو اور سمجھتے ہو تم کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، عقل کی رتی نہیں ہے اس، توبہ کرنی چاہیے، صرف توبہ اس سے نکلنے کا راستہ ہے، اگر جانا ہی تھا تو پہلے چلے جاتے نا، پہلے کیوں نہیں گئے؟ احسان جتلاتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، نے کوئی احسان نہیں کیا کسی کے اوپر، اپنے اوپر نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے اوپر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.